आकाशवाणी गोरखपुर से ही प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन। कहा, जल्दी ही मानदेय भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया, देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है मौजूद, 80% क्षमता से उत्पादन कर रही हैं यूरिया इकाइयां। और वाराणसी में आज आयोजित होगा MP-UP सहयोग सम्मेलन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में व्यापारिक सहयोग, औद्योगिक निवेश और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर होंगे MOU। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कक्षा 9, 10 और दशमोत्तर के 27,99,982 छात्र छात्राओं के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हस्तांतरित की। वहीं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के 33,334 आश्रित लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार सेवा और संवेदना के साथ हर वर्ग के हितों के लिए काम कर रही है।
जब सेवा संवेदना का हिस्सा बनती है और किसी भी सरकार का लक्ष्य व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, बल्कि सबका साथ और सबका विकास होता है, तो उसका परिणाम इसी रूप में होता है कि सबका साथ सबका विकास का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी जो मंत्र है, वह कैसे बिना भेदभाव के सभी समुदायों को उस स्कॉलरशिप की स्कीम के साथ जोड़ता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 2 लाख से अधिक ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और 18,440 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए से अधिक लागत के आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल विकास परियोजना कार्यालयों के भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करेगी।
अगर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। मैंने विभाग से कह दिया है, अति शीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करना प्रारंभ किया, जिससे अति शीघ्र इनको एक मानदेय प्रारंभ हो जाए। सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने प्रारंभ किया है, आप देखना इसी अप्रैल से हम लोग पहले जितने भी आउटसोर्स कार्मिक हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन गठित किया।
पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच सरकार ने कल आश्वासन दिया कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश की यूरिया इकाइयां वर्तमान में 80% क्षमता से उत्पादन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के अलावा अन्य स्रोतों से उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट है उसमें काफी उछाल आया है प्राइसेस में इन सभी चीजों में, और हमारी फ्रेट और रिलेटेड कॉस्ट भी बढ़ी है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इंपैक्ट हुआ है 30,000 से 35,000 टन पर डे के हिसाब से, और इसी सिचुएशन के रहते जो हमारे जो एफर्ट्स हैं, ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो हमारी अपकमिंग खरीफ सीजन की है वो 390 लाख टन है।
वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश में गेहूं खरीद कल से शुरू हो गई है। लगभग 2,24,000 से अधिक किसानों ने बिक्री के लिए पंजीकरण करा लिया है। गेहूं खरीद 15 जून तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में MPUP सहयोग सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच व्यापारिक सहयोग, औद्योगिक निवेश और अन्य क्षेत्रों में MOU भी किए जाएंगे। साथ ही काशी, उज्जैन, चित्रकूट धार्मिक पर्यटन सर्किट को संयुक्त रूप से विकसित करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस सम्मेलन की शुरुआत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अध्ययन भ्रमण से होगी, जहां क्राउड फ्लोर डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और तीर्थयात्री प्रबंधन प्रणालियों को नजदीक से देखा जाएगा। इस अनुभव के आधार पर मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास, सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्थागत सुधार के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। सम्मेलन में ODOP, GI टैग उत्पादों, पारंपरिक शिल्प, कृषि एवं फूड उत्पादों को ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात से जोड़ने पर विशेष फोकस रहेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच MOU भी किए जाएंगे, जिनके माध्यम से व्यापारिक सहयोग, औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, हस्तशिल्प संवर्धन और पर्यटन क्षेत्र में साझेदारी की जाएगी, जिससे एक व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। ये स्वतंत्रता के बाद की 8वीं और इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। श्री नारायण ने कहा कि पहले चरण में घर घर की सूची बनेगी और स्वगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहला चरण 22 मई से शुरू होगा और इससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी।
जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्थाएं पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। जनगणना एक बृहत कार्य है। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। यह जनगणना 2 चरणों में सम्पन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है।
श्री नारायण ने कहा कि सबकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी। ये डेटा न तो किसी सरकारी योजना के लाभ के लिए इस्तेमाल होगा और न ही अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकेगा। सूचना के अधिकार RTI के तहत भी किसी तरह की जानकारी साझा नहीं होगी। केवल समग्र आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। जनगणना के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बीते रविवार की देर रात PCS 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट के अनुसार 947 पदों के सापेक्ष कुल 932 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनमें 613 पुरुष और 319 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। दिल्ली की नेहा पांचाल टॉपर घोषित की गई हैं, जबकि दूसरा स्थान रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी ने हासिल किया है। वहीं अयोध्या की अनामिका मिश्रा चौथे स्थान पर रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी अपनी प्रतिभा और निष्ठा के साथ नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को नई गति प्रदान करेंगे और जनसेवा को अपने आचरण का आधार बनाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन। कहा, जल्दी ही मानदेय भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है मौजूद। 80% क्षमता से उत्पादन कर रही हैं यूरिया इकाइयां। और वाराणसी में आज आयोजित होगा MPUP सहयोग सम्मेलन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में व्यापारिक सहयोग, औद्योगिक निवेश और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर होंगे MOU। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।